एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास पर बात करने वाले हैं जो अपने प्रकाशन के इतने सालों बाद भी, मतलब 50 साल हो गए, पर आज भी पाठकों को बेचैन कर देता है, सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ बिल्कुल,
जेम्स डिकी का 1970 का क्लासिक डिलीवरेंस।
जेम्स डिकी कमाल के शख्स थे वो भी।
हाँ, एक सम्मानित कवि, अमेरिका के पोएट लॉरेट भी रहे, लेकिन साथ ही देखिए वर्ल्ड वॉर टू और कोरियन वॉर में पायलट, फिर एडवर्टाइजिंग में काम किया और प्रकृति के बहुत करीब, तीरंदाजी के शौकीन।
और ये सब चीजें उनके जो अनुभव थे वो उनके लिखने में साफ झलकते हैं, खासकर डिलीवरेंस में तो बहुत ज्यादा।
सही कहा।
ऐसा लगता है जैसे वो युद्ध का डर, प्रकृति की वो निर्मम सुंदरता है ना, और मॉडर्न लाइफ के नीचे जो दबाव आए, वो आदिम भाव, सब मिलकर कहानी को बुनते हैं। बिल्कुल,
डिकी के लेखन में हमेशा ये तनाव रहा है जिसे हम कहते हैं ना सभ्य इंसान, शहरी, मॉडर्न, और उसी के अंदर छिपा हुआ वो जंगली, वो नैसर्गिक पशु।
हाँ,
और उनकी भाषा भी इसी को दिखाती है, तेज है, पोएटिक है, लेकिन साथ में जिसे कहते हैं मस्क्यूलर प्रोज, मतलब ताकतवर गद्य।
हाँ, जिसमें अनुभव की सीधी बात हो, बिना किसी लाग लपेट के, जैसे शरीर महसूस करे वो ठंडे पानी का एहसास या उस चट्टान की खुरदराहट। और ये नॉवल आया 1970 में, अमेरिका के लिए वो एक उथल पुथल का दौर था, है ना?
बिल्कुल, वियतनाम वॉर, सिविल राइट्स मूवमेंट, पारंपरिक मूल्यों पर सवाल उठ रहे थे।
हाँ, और खासकर पुरुषत्व, मतलब मैस्कुलिनिटी की धारणाएं, सत्ता की संरचना, यहां तक कि अमेरिकन ड्रीम पर भी सवाल थे।
तो डिलीवरेंस उसी माहौल की पैदाइश लगता है।
सही कहा, ये कहानी है कि कैसे शहर का आराम, जो सेट रूल्स हैं, वो अचानक टूट जाते हैं हिंसक तरीके से।
और इसका असर सिर्फ किताब तक नहीं रहा, 1972 में जो फिल्म आई जॉन बोरमैन की,
बर्ट रेनोल्ड्स और जॉन व्हाइट वाली, हाँ वो भी बहुत कामयाब रही और उसने नॉवेल की पहुंच को और बढ़ाया। वो ड्यूलिंग बैंजोज वाला सीन और म्यूजिक तो
वो तो जैसे कल्चर का हिस्सा ही बन गया।
बिल्कुल, तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इस नॉवेल की कहानी की गहराइयों में उतरें जरा।
हाँ, किरदारों की यात्रा को समझें और वो कौन से मुख्य विषय हैं जिन्होंने इसे इतना इतना टिकाऊ बनाया है, और कहानी के वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है, उन पर गौर करें।
तो कहानी शुरू होती है एटलांटा से। चार दोस्त हैं, मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं।
नाम क्या थे उनके?
लुइस मेडलॉक, एड जेंट्री, ड्रू बोलिंगर और बॉबी ट्रिपे।
अच्छा।
लुइस जो थोड़ा लीडर टाइप है, वो आउटडोर चीजों का, सर्वाइवल का दीवाना है, वही बाकियों को मनाता है एक वीकेंड कैनो ट्रिप के लिए।
कहाँ?
नॉर्थ जॉर्जिया के पहाड़ों में, एक काल्पनिक नदी है काहुलावासी, वहां।
और लुइस का इरादा सिर्फ मौज मस्ती तो नहीं लगता है ना, उसमें एक अर्जेंसी सी है।
हाँ है, उसे पता है कि उस नदी पर डैम बनने वाला है और ये जंगली नदी हमेशा के लिए एक झील बन जाएगी, शांत, आर्टिफिशियल।
तो वो जैसे उसे मिटने से पहले जी लेना चाहता है।
बिल्कुल, अमेरिका का वो अनछुआ अदम्य हिस्सा। ये सिर्फ एडवेंचर नहीं, एक तरह की श्रद्धांजलि है शायद, या विरोध, पता नहीं।
बाकी तीन लोग वो कैसे हैं?
वो थोड़े अलग हैं। एड जेंट्री जो कहानी सुना रहा है, मतलब नैरेटर है, वो एक ग्राफिक डिजाइनर है, थोड़ा सोचने वाला पर थोड़ा पैसिव सा, अपनी रोज की जिंदगी से उबा हुआ,
शायद कुछ ढूंढ रहा है इस ट्रिप में।
हो सकता है। फिर है ड्रू बोलिंगर, वो सिद्धांतवादी है, लॉजिकल, फैमिली मैन। और चौथा है बॉबी ट्रिपे, सेल्समैन, थोड़ा नरम, थोड़ा इनसिक्योर, शायद दूसरों को अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता है।
तो ये चार अलग अलग तरह के मॉडर्न मर्द अपनी शहरी उलझनों और इच्छाओं के साथ जंगल जा रहे हैं।
हाँ, इरादा यही है कि प्रकृति के सामने खुद को परखें, शायद अपने अंदर के किसी ज्यादा असली हिस्से से जुड़ें। एक मर्दाना फैंटेसी है ये,
शहर छोड़ो, जंगल जाओ, हीरो बनो।
हाँ कुछ वैसा ही, मगर ये फैंटेसी बहुत जल्दी एक भयानक हकीकत बन जाती है। ये यात्रा सिर्फ नदी की धाराओं से लड़ना नहीं रह जाती, बल्कि वहां के लोकल पहाड़ी लोगों की हिंसा से जिंदा बचने की लड़ाई बन जाती है।
उनका डिलीवरेंस, उनका उद्धार एक बहुत ही अलग और डरावनी शक्ल ले लेता है।
शुरुआत तो लेकिन अच्छी होती है ना, मेरा दिन नदी पर, सुंदर नजारे,
बहुत सुंदर। चारों दोस्त हैरान है उस जंगली लैंडस्केप की भव्यता देखकर, उसकी कच्ची ताकत, शहर से कितनी अलग दुनिया है।
और यही वो मशहूर सीन आता है ड्यूलिंग बैंजो वाला।
हाँ, ड्रू जो गिटार अच्छा बजाता है उसे नदी किनारे एक अजीब सा लड़का मिलता है, थोड़ा एल्बिनो टाइप, वो बैंजो बजा रहा होता है।
और फिर
उन दोनों के बीच बिना बोले सिर्फ म्यूजिक का एक कमाल का मुकाबला होता है। ड्रू का सधा हुआ गिटार और उस लड़की का तेज अनगढ़ बैंजो, कुछ पल के लिए जैसे दो अलग दुनियाएं जुड़ जाती हैं। ये हिस्सा वाकई यादगार है, इसमें सुंदरता है, जुड़ाव भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी है ना?
बिल्कुल है, जैसे वो म्यूजिक उस गहरी खाई को दिखा रहा हो जो इन शहरी बाबुओं और उस जंगली इलाके के लोगों के बीच है। ये दोस्ती कम, चेतावनी ज्यादा लगती है।
और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं माहौल बदलता है।
हाँ, ज्यादा अपरिचित, ज्यादा रहस्यमयी, अंदर ही अंदर खतरनाक। उन्हें लगने लगता है कि वो यहां घुस बैठी हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां उनके नियम नहीं चलते।
और फिर वो होता है जिसका डर था, कहानी का सबसे भयानक मोड़।
एड और बॉबी अपनी कैनो में थोड़ा आगे निकल जाते हैं लुईस और ड्रू से। तभी नदी किनारे से दो आदमी निकलते हैं, लोकल पहाड़ी, हाथों में बंदूक। शुरू में थोड़ी तनाव वाली मजाक मस्ती होती है, लेकिन वो बहुत तेजी से बदसलूकी और फिर सीधी हिंसा में बदल जाती है।
ये हिस्सा पढ़ना बहुत मुश्किल है। एड को पेड़ से बांध दिया जाता है।
हाँ, और उसे जबरदस्ती गन पॉइंट पर बॉबी के साथ होते यौन उत्पीड़न को देखने पर मजबूर किया जाता है।
ये पल, ये उस पूरी यात्रा के मायने ही बदल देता है। वो रोमांच, वो प्रकृति से जुड़ने की बातें, सब खत्म,
सब चकनाचूर। अब सिर्फ जान बचाने का सवाल है।
ये वो पॉइंट है जहां से वापसी नामुमकिन है।
बिल्कुल। लेकिन तभी जैसे ही दूसरा हमलावर एड की तरफ बढ़ता है, जंगल से एक तीर आता है सनसनाता हुआ।
लुईस का।
हाँ, और वो सीधा बॉबी का रेप करने वाले आदमी के सीने में लगता है। वो वही ढेर। ये तीर लुईस ने चलाया था जो चुपके से पहुंच गया था। दूसरा हमलावर घबराकर जंगल में भाग जाता है।
जान तो बच गई, लेकिन एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। अब वो सिर्फ पीड़ित नहीं है,
हत्यारे भी हैं, या कम से कम लुईस तो है। यहीं से नॉवल का नैतिक संघर्ष शुरू होता है।
बिल्कुल। अब सवाल सीधा है, क्या करें? पुलिस के पास जाएं या लाश को टिकावाने लगा दें?
ड्रू, जो हमेशा उसूलों वाला रहा है, वो जोर देता है कि कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए।
लेकिन लुईस, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है या शायद ज्यादा बेरहम?
हाँ, उसका तर्क है कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ का कानून भरोसे लायक नहीं। हो सकता है पुलिस वाले ही हमलावरों के रिश्तेदार हों, बदला ले। वो कहता है अब कानून हम है।
ये सीधा टकराव है सभ्यता के नियम बनाम जिंदा रहने की जरूरत। किसके नियम मानेंगे आप जब जान खतरे में हो?
और आखिर में डर के मारे एड और बॉबी भी लुईस की बात मान लेते हैं,
लाश को वहीं दफना देते हैं।
हाँ, ये ड्रू के लिए एक बड़ी नैतिक हार है। वो जैसे टूट जाता है, उसके अंदर का जो मॉरल कंपास था वो हिल जाता है, वो चुप हो जाता है, ग्रुप से कट जाता है।
और इसके ठीक बाद एक और ट्रेजेडी।
हाँ, जब वो नदी की तेज धारों रैपिड से गुजर रहे होते हैं, ड्रू अचानक कैनो से उछलकर पानी में गिर जाता है और गायब।
उसका शरीर भी नहीं मिलता।
नहीं मिलता। और डिकी यहां फिर एक सवाल छोड़ देते हैं, क्या ये सिर्फ हादसा था, या उस भागे हुए हमलावर ने गोली मारी, या ड्रू ने जीने की इच्छा ही खो दी थी?
ये सवाल बना रहता है, लेकिन ड्रू की मौत का सिंबॉलिक मतलब बहुत गहरा है।
हाँ, जैसे उसके साथ ही उस घाटी में सभ्यता के आखिरी नियम भी दफन हो गए। अब वो तीनों, एड, घायल लुईस और सदमे में डूबा बॉबी, पूरी तरह से एक आदिम कानून विहीन दुनिया में फंस गए हैं। कोई वापसी नहीं।
और यहीं से कहानी का फोकस एड जेंट्री पर शिफ्ट होता है ना?
बिल्कुल। लुईस, जो लीडर था, वो बुरी तरह घायल है, पैर टूट गया है। अब जिम्मेदारी उस एड पर है जो अब तक पैसिव माना जाता था।
और उसे एक भयानक शक होता है।
हाँ, कि वो दूसरा पहाड़ी आदमी मरा नहीं है, वो भाग गया था, और शायद वो ऊपर चट्टानों से उनका पीछा कर रहा है, मौके का इंतजार कर रहा है, एक एक करके खत्म करने के लिए।
ये एहसास एड को बदल देता है
पूरी तरह। उसे समझ आता है कि अगर जिंदा रहना है तो शिकार बनना बंद करना होगा, शिकारी बनना होगा।
और यही नॉवल का वो सबसे जबरदस्त हिस्सा आता है, रात के अंधेरे में एड का उस सीधी चट्टान पर चढ़ना।
वो सिर्फ फिजिकल टेस्ट नहीं है, वो एक गहरा मानसिक और शायद स्पिरिचुअल बदलाव भी है।
वो चढ़ाई का डिस्क्रिप्शन कमाल का है।
एड जैसे अपनी शहरी पहचान, अपनी हिचक, अपना डर सब पीछे छोड़ देता है। वो अंधेरे, चट्टान और अपने इरादे के साथ एक हो जाता है।
देखिए, लिखते हैं कि वो महसूस करता है जैसे वो कोई शिकारी जानवर हो, बाज या उल्लू, सिर्फ शिकार पर फोकस।
ये वो एड नहीं है जो एटलांटा से आया था, ये एक नया एड है, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा मौलिक। उसका डिलीवरेंस यहाँ एक अलग मतलब ले रहा है, वो अपनी पुरानी सीमाओं से आजाद हो रहा है, लेकिन कीमत बहुत भयानक है।
चट्टान के ऊपर पहुंचकर वो इंतजार करता है।
हाँ, सुबह होते ही उसे एक आदमी दिखता है राइफल के साथ। एड को यकीन है कि यही वो दूसरा हमलावर है। वो अपने धनुष बाण से हमला करता है।
एक छोटा सा संघर्ष होता है।
हाँ, जानलेवा। एड खुद भी जख्मी होता है अपने ही तीर से, लेकिन वो उस आदमी को मार देता है।
लेकिन यहां भी डिकी चैन नहीं लेने देते।
बिल्कुल नहीं। जब एड लाश को करीब से देखता है तो उसे मरे हुए आदमी के दांत देखकर शक होता है।
उसे लगता है ये शायद वो आदमी नहीं है।
हाँ, क्या उसने गलती से किसी बेगुनाह शिकारी को मार दिया? ये सवाल एड को और हमें भी परेशान करता रहता है। ये नैतिक अनिश्चितता अंत तक बनी रहती है।
क्या जिंदा रहने के लिए की गई हिंसा हमेशा सही होती है?
इस शक के बावजूद एड को आगे बढ़ना है। वो लाश को नीचे लाता है, बॉबी की मदद से पत्थरों से बांधकर नदी में डुबो देता है। एक और राज, एक और बोझ।
फिर वो एक बहुत मुश्किल प्लान बनाता है।
हाँ, और जैसे तैसे खुद को, घायल लुइस को और शॉक में डूबे बॉबी को कैनो में बिठाकर नदी के आखिरी सबसे खतरनाक रैपिड्स को पार करता है।
आखिरकार वो उस सभ्यता तक पहुंच जाते हैं, एंट्री नाम का छोटा सा कस्बा जो उस बनने वाली झील के किनारे है।
थके हुए, जख्मी, डरे हुए, लेकिन जिंदा।
पर कहानी यहां खत्म नहीं होती।
अब उन्हें अपने किए को छुपाना है।
हाँ, अब दूसरी लड़ाई शुरू होती है। एड जो अब पूरी तरह लीडर बन चुका है, वो एक कहानी घड़ता है।
पुलिस को क्या बताता है? कि उनकी कैनो पलट गई थी रैपिड्स में और ड्रू हादसे में डूब गया। हत्याओं का, हमले का कोई जिक्र नहीं।
लोकल शेरिफ को शक होता है।
होता है, उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, खासकर जब बाद में ड्रू की लाश मिलती है और उसमें गोली के निशान की बात उठती है।
लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता।
नहीं, एक लोकल डॉक्टर की गोलमोल रिपोर्ट, शहर वालों की उदासीनता, आखिरकार उन्हें जाने देना पड़ता है।
तो वो अटलांटा लौट आते हैं अपनी पुरानी जिंदगी में। लेकिन क्या वो वाकई पुराने एड, लुइस और बॉबी हैं?
नहीं, नॉवल का आखिरी हिस्सा यही दिखाता है। वो नदी से निकल आए, लेकिन नदी उनके अंदर रह गई है। वो उस वीकेंड के भयानक राज से हमेशा के लिए बंधे हुए हैं। वो अनुभव उन्हें बदल चुका है।
एड बाद में सोचता भी है, नदी हर जगह है।
ये मेरे सपनों में है और सुबह ये मेरे मुंह में होती है। वो अनुभव, वो हिंसा, वो डर अब उसकी पहचान का हिस्सा।
ये तो हुई कहानी। अगर हम इसके गहरे मतलबों पर बात करें तो सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है सभ्यता और जंगलीपन का टकराव, सिविलाइजेशन वर्सेस द प्रिमिटिव वाइल्ड।
बिल्कुल।
हाँ,
कैसे शहर का आरामदायक, नियमों वाला जीवन प्रकृति की निर्मम आदिम सच्चाई के सामने टूट जाता है। नदी, वो घाटी, वो पहाड़ी लोग सब उसी आदिम दुनिया के प्रतीक हैं।
और इसी से जुड़ा है मॉडर्न मैस्कुलिनिटी का सवाल, आधुनिक पुरुषत्व।
बिल्कुल। ये चारों किरदार जैसे पुरुषत्व के अलग अलग रूप या संकट दिखाते हैं। लुइस का वो सुपर कॉन्फिडेंट सर्वाइवलिस्ट वाला अंदाज अंत में कितना नाजुक निकलता है।
बॉबी की लाचारी, उसका शिकार बनना।
ड्रू का उसूलों पर टिके रहना, उसकी बौद्धिकता जो अराजकता के सामने बेकार हो जाती है।
और फिर एड की यात्रा, वो एक आम शहरी आदमी, लेकिन हालात उसे उसके अंदर छिपी उस आदिम क्षमता को जगाने पर मजबूर करते हैं जिसकी उसे खुद भी खबर नहीं थी।
उसका डिलीवरेंस असल में इसी छुपी हुई, शायद खतरनाक क्षमता का बाहर आना है। ये दिखाता है कि मर्दानगी की पारंपरिक धारणाएं कितनी खोखली हो सकती हैं और असल ताकत शायद कहीं और होती है।
लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये ताकत हमेशा अच्छी होती है?
बड़ा सवाल है, और यही नैतिकता और न्याय की अस्पष्टता का थीम आता है, मोरालिटी एंड जस्टिस।
क्या लुइस ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था या मर्डर? क्या एड का मारना जरूरी था या बदले की बर्बरता?
नॉवेल कोई आसान जवाब नहीं देता। लाशों को छुपाना, झूठ बोलना, ये सब दिखाता है कि चरम हालात में शायद नैतिकता के पैमाने टूट जाते हैं। जिंदा रहने का नियम सबसे ऊपर हो जाता है।
और एड का वो शक कि उसने सही आदमी को मारा भी या नहीं, वो इस नैतिक धुंधलके को और गहरा कर देता है।
फिर है ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ डिस्कवरी का थीम, परिवर्तन और आत्मखोज।
जैसा हमने कहा, टाइटल डिलीवरेंस यानी उद्धार, बड़ा आयरोनिक है।
वो खतरे से तो बच जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद की एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो डरावनी है। एड का बदलाव सबसे नाटकीय है, उसका पुराना निष्क्रिय में मर जाता है और एक नया सक्षम लेकिन शायद ज्यादा खतरनाक मैं पैदा होता है।
ये ज्ञान ताकत देता है पर सुकून छीन लेता है। सच्चा आत्मज्ञान शायद आराम कुर्सी पर नहीं मिलता,
शायद तब मिलता है जब सब कुछ छिन जाए।
और आखिर में यादों और ट्रॉमा की शक्ति, मेमोरी एंड ट्रॉमा।
कहानी नदी से निकलने पर खत्म नहीं होती। नॉवल का आखिरी हिस्सा आफ्टर यही दिखाता है कि वो अनुभव उनके साथ रहता है, उन्हें उन यादों के साथ जीना है।
वो वापस शहर आ गए हैं, लेकिन जंगल उनके अंदर आ गया है।
हाँ, उस अनुभव ने उनकी दुनिया, उनके रिश्ते, उनकी खुद की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया है।
अगर हम संक्षेप में डिकी के लिखने की स्टाइल की बात करें तो एड का फर्स्ट पर्सन नैरेटर होना बहुत असरदार है।
और उसी के कन्फ्यूजन, उसी के बदलते नजरिए से ये हमें कहानी के अंदर खींचता है। लेकिन हाँ, ये भी दिखाता है कि एक व्यक्ति का नजरिया कितना सीमित हो सकता है। पूरी सच्चाई शायद कभी पता नहीं चलती,
खासकर उस चट्टान पर मारे गए आदमी के बारे में।
और जैसा आपने शुरू में कहा, डिकी कवि थे, तो वो चीज उनके गद्दे में दिखती है। प्रकृति का वर्णन देखो, कितना संवेदनशील।
और फिर हिंसा के सीन उतने ही साफ निर्मम।
प्रतीक भी बहुत मजबूत हैं। नदी जो समय, भाग्य, प्रकृति की उदासीन शक्ति का प्रतीक है। घाटी जैसे बाहरी दुनिया से कटी एक आदिम कैद, और धनुष बाण जो बंदूक से ज्यादा निजी, ज्यादा आदिम हिंसा का रूप है।
और कहानी में शुरू से ही वो अशुभ संकेत मिलते रहते हैं, है ना, फोरशैडोइंग।
हाँ, जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा करते हैं।
तो कुल मिलाकर डिलीवरेंस एक ऐसी कहानी है जो हमें सभ्यता के उस पतले से पर्दे के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये दिखाती है कि हमारे अंदर, हमारी आरामदायक जिंदगी के नीचे क्या कुछ छिपा हो सकता है,
और जब वो बाहर आता है तो कितना डरावना हो सकता है।
हाँ, और ये उस मुश्किल सच का भी सामना कराती है कि बहुत ज्यादा दबाव में इंसान खुद के भीतर क्या क्या खोज सकता है, असाधारण क्षमता भी
और भयानक क्रूरता भी। ये एक ऐसी यात्रा है जिससे पाठक भी शायद थोड़ा बदला हुआ ही बाहर निकलता है।
ये संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।